वाली लाइन पहले सुन लो कि कैसी बोलना फिर बोलना।
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे,
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भव
तुमे। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर प्रमुदित मनादुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि दासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा
लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
नहीं करेंगे और महावीर स्वामी बोलेंगे तो आपकी रिदिम नहीं बनेगी। और सभी लोग महावीर स्वामी बोल रहे हैं जबकि महावीरस क्या होता है, डबल अक्षर होने पर एक अक्षर एक्स्ट्रा जोड़ने की फैसिलिटी मिलती संस्कृत में, तो महावीरस स्वामी आधा सा और एक्स्ट्रा ताकि हमारी ट्विनिंग ठीक ठीक बन जाए। हाँ,
स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो
घन
स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा के को नृपति वर सिद्धार्थ तनयः
विचित्रात्मा के को नृपति वर
अजन्मापी श्रीमान विगत भवरागो अद्भुत गतिर
अजन्मापी श्रीमान विगत भवरागो अद्भुत गतिर
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे कल्लोल विमला कल्लोल विमला ग्रह ज्ञानां भोभिर् जगति जनतां यास्नपयति
ज्ञानां भोभिर् जगति जनतां यास्
इदानीमप्येषा बुधजनमरालैः परिचिता
इदानीमप्येषा बुधजनमरालैः परिचिता
महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे त्रिभुवन जयी काम सुभटा
अनिर्वारो प्रेकस
त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्ये न विजिता
कुमारावस्थाया मपि निज
पुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिना
पुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिना
महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे प्रशमन पराकस्मिगभिष
महामोहातंक
प्रशमन पराकस्मिगभिष निरापेक्षो बंधुर् विदित महिमा मंगलकर
निरापेक्षो बंधुर् विदित महिमा
शरण्यः साधूनां भवभयभ्रतामुत्तमगुणो
शरण्यः साधूनां भवभयभ्रतामुत्तमगुणो
सुखम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम् या पठेत् शृणुयात् चापि सायाति परमां गतिम्
महावीर भगवान की कोई आदमी सच्चाई की राह पे चलता है लेकिन लोग उसे मूर्ख समझते हैं, समझेंगे क्यों नहीं समझेंगे? जब आप ऐसी चाल चलोगे तो लोग मूर्ख समझेंगे। ऐसे ही संसार है, अच्छी राह चलेंगे तो जैसे बहुत सारे पागल लोग मिल जाएं तो एक समझदार को वो पागल कहेंगे, हाँ उनको वो समझदार आदमी पागल मालूम पड़ेगा क्योंकि मेजॉरिटी तो पागल की, तो वो अपने को मानते हैं हम सही, और ये जो व्यक्ति है एक वो गड़बड़। तो जब बेईमानों की मेजॉरिटी हो उसमें एक आध ईमानदार हो तो वे बेईमान साबित हो जाएगा वो, कि देखो मेजॉरिटी सब एक तरफ जा रही और आप एक अकेले। ऐसे ये भी है भैया, लेकिन अब ऐसा सोचकर वो अपने जीवन में झूठ का सहारा लेने लगता है यदि, तो ये उसकी गलती है। क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या फिर अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई है उसे सच्ची राह पे ही चलना चाहिए। ऐसा ही है भैया, कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हमेशा बच्चन की वो चार लाइन आपको सुनाता हूँ, मेरी मृदुता बहुत गई रगड़ी मसली है, मेरी मृदुता बहुत गई रगड़ी मसली है पर नहीं हुई कठोर, लगता है असली। अगर आपके अंदर वास्तव में सच्चाई है तो फिर कितना भी हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन सच्चाई का आनंद एक बार मिल जाता है तो फिर बेमुश्किलें उस आनंद को हमें कहना चाहिए लेने से रोक नहीं पाती हैं। एक बार जैसे किसी को किसी अच्छी चीज़ का स्वाद मालूम पड़ जाए फिर वो कितनी भी चीज़ें उसको दी जाएँ वो उनको पसंद नहीं करता। इसी तरह सच्चे रास्ते पे चलने वाला मुश्किलों के बावजूद भी सच्चा रास्ता नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ देता है तो इसके मायने हैं कि उसने अभी सच्चे रास्ते का वास्तव में आनंद नहीं लिया है। कहना तो यही पड़ेगा भैया, मंदिर जाते समय चावल क्यों चढ़ाते हैं? अच्छी बात है, हमने और कोई द्रव क्यों नहीं चुनी? हम गेहूँ चढ़ा सकते थे, हम ज्वार चढ़ा सकते थे, हमने चावल ही चुना। चावल चुनने के पीछे हमारा उद्देश्य रहा। चावल सीधे सीधे नहीं उगते हैं, कभी उगते हैं चावल, धान उगती है और धान के ऊपर से पहले एक छिलका हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो लालिमा है वो हटानी पड़ती है, तब एकदम वाइट बहुत स्वच्छ निर्मल और उज्ज्वल चावल प्राप्त होते हैं। वो इस बात के प्रतीक हैं, भगवान के सामने हम चढ़ाते हैं कि भगवान ऐसे ही मेरे आत्मा में चार घातिया कर्म जो छिलके की तरह लगे हैं वो उतर जाएंगे और फिर लालिमा की तरह मेरे चार अघातिया कर्म जब उतर जाएंगे तब जाकर के मैं अपने उस उज्ज्वल स्वभाव को प्राप्त करूंगा। मैं चावल चढ़ा करके जैसे इन चावलों ने उज्ज्वलता प्राप्त की है वैसे ही मैं भी उज्ज्वलता प्राप्त करना चाहूँ। चावल को दोनों अंगुलियों के बीच सीधा रख करके दबाएँ, उंगलियों में दर्द होने लगेगा लेकिन टूटेगा नहीं। चावल अखंडता का प्रतीक है। ऐसे ही हम भी अपने अखंड पद को प्राप्त चाहते हैं, अक्षय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कभी एक बार मिलने के बाद फिर कभी छीने नहीं हमसे, कभी छूटे नहीं। और तीसरी चीज़, चावल को बोने पर उगता नहीं है चावल, धान बोने पर उगती है, चावल नहीं उगता। जैसे चावल नहीं उगता है ऐसे ही मैं भी अब संसार में बार बार जन्म और मरण नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने चावल चढ़ाए हैं। ऐसी तीन विशेषताएं चूंकि चावल की हैं इसलिए हमारे पुराने लोगों ने और चावल ही चुने हैं भगवान के सामने चढ़ाने के लिए, इसलिए हम लोग चावल चढ़ाते हैं। चावल चढ़ाते समय क्या भावना भानी चाहिए? यही भावना भानी चाहिए, हमारा जीवन उज्ज्वल बने, हमारा जीवन अखंड हो और हम जन्म मरण से पार हो जावें। यही विशेषताएँ हैं तीनों चावल की। भगवान जी की प्रतिमा की तरफ पीठ क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो भैया, जिसकी तरफ पीठ की जाती है तो इसके मायने हैं कि हम उसे नहीं चाहते। एक अर्थ तो ये है, है? तो कभी भी जो पूज्य पुरुष हैं उनको पीठ नहीं दिखानी चाहिए, इसका मतलब है कभी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीठ दिखाना यानी इग्नोर करना, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमेशा उन्हें अपने सम्मुख रखना चाहिए। ये एक आशय तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाहर जाते समय हम भले ही भगवान की तरफ पीठ करना नहीं चाहते, लेकिन पीठ तो हो ही जाएगी, तो उस समय हम क्या सोच करके बाहर निकल रहे हैं, हैं कि भगवान अभी जब मैं आपकी तरफ आया था तो संसार की तरफ पीठ थी और आप मेरे सामने थे, मैंने आपकी भक्ति करी, पूजा करी, आपने मुझे साहस दिया, दृढ़ता दी, विश्वास दिया, अब मैं उस साहस, दृढ़ता और विश्वास इन सब को लेकर के बाहर जा रहा हूँ। अब संसार की तरफ मेरी दृष्टि है, आपकी तरफ पीठ नहीं है, वो तो मैंने इसलिए आपकी तरफ अपनी पीठ करी है कि जरा थपथपा तो दो, संसार से जूझना पड़ेगा मैं इसलिए।
तो वो
हमेशा सम्मुख रखना चाहते हैं, इसलिए छोटे महाराज मेहंदी लगे हुए हाथों से हार नहीं लेते हैं, आप ले लेते हैं, तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है। देखो अगर आपको महाराज को हार देना है तो फिर आपको मेहंदी अलग करना पड़ेगी,
लगाना पड़ेगी, ये नहीं कह रहा हूं। बिना लगे वाले भी दे सकते हैं, लगे वाले अपन को तो ज्यादा लाभ है, अपन को दोनों दोनों प्रकार के लोग दे सकेंगे, महाराज को एक ही प्रकार के लोग दे सकते हैं। अब आधे लोग तो कम ही होगा, यहाँ तो सब लोग लगाते हैं, बूढ़े लोग भी लगाते हैं, बड़े बड़े लोग भी लगाते हैं, अब कोई ना कोई की बहन तो होगी, कोई बड़ी सारी अम्मा भी हो 80 साल की, वो भी किसी की बहन है, और कोई भी पर्व आएगा तो बहन तो लगाएगी, मेहंदी तो लगाएगी। लेकिन अपने यहां ऐसा लिखा है कि बहुत ज्यादा गाढ़ा रंग हो जाने पर जीव राशि के उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए दो चार दिन अगर वो फिल पड़ जाए, एकदम डार्क जो अपन ने लगाई है वो डार्कनेस की वजह से जीव राशि बहुत जल्दी आकर्षित होती है उसकी तरफ, रेड कलर की तरफ विशेष रूप से, और उसमें भी डार्क, तो इसलिए शायद कहीं कहीं पर मैंने सुना ऐसा कि दो तीन दिन वो पुरानी पड़ जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो नई नई भी है तब भी चम्मच से तो दे ही सकते हैं, चम्मच में तो कोई दिक्कत नहीं, मगर महाराज को नहीं अनाज दे दिए। प्लास्टिक की
शिकायत नहीं, वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं लेते, कारण बताओ, नोटिस जारी हो गया, कारण बताओ। प्लास्टिक की बिंदी से आप हार क्यों नहीं लेते हैं? भैया प्लास्टिक की बिंदी जो लगी रहती ना, उसमें जो एडहेसिव है वो गड़बड़ हो सकता है, उसमें जो चिपकाने का पीछे लगा रहता ना, वो पहले सरेस वगैरह जो खराब चीज थी, जो कि जानवरों के हड्डियों से, उसके खुरों से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती थी, संभव है आज के समय में कितनी चीजें हैं ऐसी जिनमें कि हमें नहीं मालूम पड़ता और बेईमानी करते हैं लोग, तो क्यों अपन आहार के समय उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज उपयोग कर लेवें? मना नहीं है उसके लिए कि आप कुछ भी नहीं लगावें, लगाएं बिंदी तो लगाएं, लेकिन कोई अल्टरनेट उसका खोज ले में तो ज्यादा अच्छा रहे, तो विकल्प नहीं होगा, उसके छू जाने का विकल्प हो जाता है। कारण क्या, कारण से ध्यान भटकता है। भैया अपन लोग अपने मन को 24 घंटे तो संसार में घुमाते हैं, वो 5 मिनट में चाहते हैं कि वो रुक जाए, अगर पंखा चल रहा है और वो कोई ऑफ कर दे तब भी फोकट में 5 मिनट तो चलता ही रहता हूं, ऐसा ही अपना मन है, 24 घंटे में 23 घंटे 50 मिनट तो दुनिया में घुमाया और 10 मिनट बैठ गए आंख बंद के, हाथ पे हाथ धरे, तो वो तो जहां का संस्कार है वहीं जाएगा। कम से कम 2 घड़ी चुपचाप बैठो, 2 घड़ी बैठने पर, 48 मिनट बैठने पर 30 सेकंड को रुक जावे अगर, तो पीठ थपथपाना सक्सेस, मिल गई सफलता, ऐसे नहीं रुकता वो, तो जिन विषयों के कांटेक्ट में हमेशा रहता है उन्हीं की तरफ जाता है। हमें अभ्यास बदलना पड़ेगा, सुबह शाम रोज अभ्यास करेंगे तब फिर मन हमारे कंट्रोल में होगा, हम जहां ले जाना चाहेंगे वहां ले जाएंगे। और मन को सिर्फ डाइवर्ट करना, आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि मन को रोकने के मायने ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ लें, नहीं, मन को पकड़ ही नहीं सकते ना रोक सकते, वो तो निरंतर विचार चलते हैं, अशुभ विचारों से शुभ विचारों में उसको डाइवर्ट कर दो, बस इतना ही हम आसानी से कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे तो संभव भी है, इसलिए अपने को अभ्यास करना चाहिए। मंदिर से दूर चौराहे आगे कोई मुनि महाराज चौके की तरफ आते ही नहीं है, एक ही दिन में घबरा गए, बताओ अभी हम आज धीरे से यहीं रुक गए तो बड़बड़ा गए, वो क्या वहां तक नहीं आ रहे, तो कल का पक्का रहा फिर न्योता। दूर वालों की तरफ भी ध्यान दें, महाराज जी आपसे कह रहे हैं वो, हम तो गए थे कल दूर वालों से। नहीं, सब जगह जाते हैं, देखो जब दूर जाने लगेंगे तो पास वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई नहीं आया, जब पास चले जाते हैं तो दूर वाले कहते हैं कि कोई नहीं आया, दोनों दोनों जगह जाते हैं भैया, निमंत्रण से नहीं जाते, बस इतना ही ध्यान रखें, नहीं तो आप निमंत्रण कर दो। सम्यक चारित्र का वर्णन करते हुए श्री शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानानों में लिखा है कि जिन धर्म वृक्ष की जड़ विषयों से विरक्ति है, जिसकी बड़ी शाखा संयम है, जिसमें यम नियम आदि पत्ते हैं, उपशम भाव पुष्प हैं, ज्ञानानंद रूपी जिसके फल हैं, जो पंडित रूपी पक्षियों से सेवित हैं, हाँ लिखा है सब, ऐसे धर्म वृक्ष को मुनि भी हों तो भी चोरी रूप तीव्र अग्नि से भस्म, चोरी रूप नहीं कुछ और होना चाहिए, पंडित रूपी पक्षियों से सेवित हैं, ऐसे धर्म वृक्ष को मुनि भी हो तो भी चोरी रूप तीव्र अग्नि से भस्म कर डालते हैं, और कुछ होना है, तपस्या रूप अग्नि तो जमता है मामला, लेकिन हिंदी में ऐसा तो नहीं मिस्टेक हो गई, संस्कृत में देख लें अपन। अच्छा, अब प्रश्न यह है कि ऐसे धर्म वृक्ष का चोरी रूपी अग्नि से किस प्रकार भस्म किया जा सकता है। श्लोक है, विषय विरति मूलम संयमोद्धाम साखम, फिर उसके बाद यमदशलक पुष्पम ज्ञान लीला फलाटम फलाटम विबुदजन सकुंतई सेवितम धर्म वृक्षम दहति मुनिरपि हस्ते यति ब्रानलेन। इस्ते नहीं है वो, अस्ते है, अपन ने इस्ते से चोरी निकाल लिया, अस्ते रूपी, हाँ अर्थात अचोरी लेंगे, वहां पर चोरी नहीं निकलेगी, वही तो मैं सोच रहा था कि कैसे निकल गया ऐसे, तीव्र अनलेना अस्तेय रूपी, तीव्र अनल के द्वारा, सही है भैया, संस्कृत में, हिंदी करने वालों ने गड़बड़ कर दी उसमें, ये हो सकता है। महाराज गंधोदक कहां कहां लगाना चाहिए, एक अम्मा जी थी 70-75 साल की और वो हमको दमोह में मिल गई, तो वो कहने लगे कि महाराज, उन्हें देख लिया होगा किसी को, लोग ऐसा देख लेते दूसरे को, दूसरा कुछ भी करे उसको बहुत जल्दी देख लेते कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा, अब इसको कैसे बताएं कि कैसा करना चाहिए, तो वो अम्मा जी कहने लगी, काय महाराज कौन हाथ से गंधोदक लेना चाहिए, दाएं हाथ से कि बाएं हाथ से, अब हम क्या कहें उनको, हमने उनको कहा कि अम्मा जी दो ही हाथ से ले लेना चाहिए, लड़ो बनने आप ने दाएं से ने बाएं से, ऐसा ही हमें कहना है कि अपने यहाँ पर गंधोदक लगाने का वास्तव में तो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, माथे पर चढ़ाना या कि उत्तमांग आँखों पर लगाना या कि गले तक, यहाँ तक सीमित है, ये उत्तम अंग कहलाता है, गंधोदक का स्पर्श इसी जगह होना चाहिए, अन्यत्र कोई लगाता है तो उसे सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरी बात, गंधोदक एक बार अपना हाथ माथे से लग गया, शरीर से लग गया, फिर वो हाथ गंधोदक में नहीं डुबाना, बस इतना विवेक रखें हम, अपने हाथ में अलग से ले लें, फिर जहां लगाना सो वहां लगाओ, क्योंकि बीमारी सीमारी हो जाती, मन मानता नहीं है, तो फिर
कीले।
हाँ, क्योंकि महाराज के अभी सब जने जो है आपकी बात अगर मान रहे हैं कि महाराज कहते कि पी सकते हैं, पी सकते क्या?
पेटे में।
हाँ, नहीं पीना नहीं चाहिए। देखो पवित्र वस्तु है, उसको अभिनय नहीं होनी चाहिए। महाराज को हमने आहार दी है, क्यों लगाते? देखो भगवान का जब अपन अभिषेक करते हैं तो क्यों करते हैं अभिषेक, बताओ? हे भगवान, आप तो निर्मल हो लेकिन हम अपने राग द्वेष से मलिन हैं। हम अपने शरीर पर जल की धारा डालें तो गंदा जल निकलेगा, लेकिन आपके पवित्र शरीर पर हम जल धारा छोड़ करके अपने शरीर की मलिनता को दूर करना चाह रहे हैं। आपके जैसा ही परम औदारिक शरीर हमें प्राप्त हो, इसलिए आपके परम औदारिक शरीर पर हम जलधारा छोड़ रहे हैं। उससे जो जल निकला है वो कैसा है? सुगंधित। गंदेन सहिता उदगा गंदोदका है, सुगंधित जल को गंदोदक कहते हैं। और वो सुगंधित जल हम अपने माथे पर चढ़ा करके, अब अभिषेक तो देख लिया, अभिषेक से हमारे परिणाम निर्मल हो गए, अब हम उसको अपने माथे पर लगाते हैं और ये मान लेते हैं कि हम निर्मल हो गए। तो गंदोदक क्यों लगाया? अपने शरीर को और मन को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना? वाह, आहार दिया हमने महाराज को, तो उन्होंने रात्रि भोजन त्याग के लिए किया कहा, हमने 2 महीने का रात्रि भोजन त्याग कर दिया। लेकिन मन में सोच लिया था कि ये त्याग केवल घर में ही निभा पाएंगे, बाहर नहीं निभेगा। महाराज क्या ये सही है? इसमें मुझे पाप तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा भैया, आपने अगर मन में ऐसा सोच लिया था तो कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसे कैसे लगेगा जब हमने मन, अब एक व्यक्ति ने तो मालूम, एक व्यक्ति ने क्या करा, उन्होंने कहा कि छोड़ो आपका आलू का त्याग है, कहते महाराज त्याग है। रात्रि भोजन का त्याग, कहते महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग। महाराज का रात्रि भोजन का त्याग, महाराज का ही आलू का त्याग, सब कुछ उसमें त्याग है। महाराज जी त्याग है, हाँ महाराज जी का त्याग है, त्याग है। ये बेईमानी कहलाएगी। सुनो, उसमें ऐसा कर लेना चाहिए कि अपन अपने घर में तो कम से कम जब अपने, हम तो ऐसे ही देते हैं कि अपन जब अपने अपने शहर में हैं, बाहर जाएंगे तो फिर जैसी व्यवस्था बन जाएगी वैसा कर लेंगे, और जब तक अपने घर में हैं तो कम से कम रात्रि में नहीं खाएं, इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है विशेष रूप से। तो ऐसा कर लेना चाहिए, आपने मन में अगर सोचा है तो वैसा कर लें। क्या भक्तांबर और अन्न पाठ संस्कृत में पढ़ना ही जरूरी है? हिंदी में किया गया पाठ क्या सही नहीं होता? भैया, जिस भाषा में जो भक्ति की गई है उस भाषा में ही भाव विशेष रूप से आते हैं। मानतुंग आचार्य महाराज ने संस्कृत में भगवान की, आदिनाथ भगवान की भक्ति करी, भाषा का संस्कृत का उपयोग किया उन्होंने, उसमें भी अपने भावों को ठीक ठीक डाल पाए। अब यदि हम उनका ट्रांसलेशन भी करते हैं, हिंदी वर्जन करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, अब तो 175 अनुवाद हो चुके हैं भक्तांबर के, विभिन्न भाषाओं में हो चुके हैं, तो उनमें वो चीज़ नहीं आ पाती है अनुवाद करने में जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में होती। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जिस भाषा में कहा गया उसी भाषा में उपयोग करें। और दूसरी बात यह है कि हर एक भाषा का अपना रिदिम होता है, हर एक भाषा की अपनी ध्वनि होती है, अपना उच्चारण होता है, और ध्वनि का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने यहाँ पर किया गया। दिव्य ध्वनि को भी ध्वनि रूप ही माना गया। मंदिरों में घंटे की ध्वनि करते हैं, विभिन्न प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृत भाषा का जो उच्चारण है वो अलग प्रभाव देता है, और जो अन्य भाषाएं हैं उनका उच्चारण अलग प्रभाव देता है। इसलिए अधिक प्रभाव यदि आवश्यक है तो फिर हमें संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए, वो जाओ। कोई महाराज जी बनना चाहे तो उसे दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे वाह, राजस्थान में कोई दीक्षा ले रहा है? अभी तक तो संघ में कोई भी नहीं है, एकाध कोई महाराज हो, और बाकी तो राजस्थान के कोई भी नहीं है भैया। अब अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, आपको आशीर्वाद दे देता हूँ। और दीक्षा लेने के लिए तीन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, तत्व का अभ्यास करना चाहिए, संसार से विरक्ति होनी चाहिए और परिचय और उपसर्ग सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ये तीन बातें अगर हम निरंतर अपने मन में बनाते चले जाएं तो फिर हो सकता है बन सकते हैं। भावना भाने में तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी बने तब भी भावना तो भाना चाहिए, सबको भाना चाहिए। उसमें लिखा है कि सच्चा गृहस्थ या सच्चा श्रावक वही है जो श्रावक के व्रतों का पालन तो करता है लेकिन हमेशा भावना भाता है कि मैं मुनि बनूं, महाव्रतों का पालन करूं। है अकेला रात्रि भोजन का त्याग, देखो आप, और भावना क्या भा रहा है, मैं मेरे जीवन में महाव्रतों का पालन। भावना भाने में क्या लग रहा है, कोई अपना कुछ भी मतलब कोई उसमें न पाप लग रहा है न कोई अपना कुछ पैसा लग रहा है उसमें, सिर्फ भावना भाने से भी पूरे जीवन अगर कोई भावना भाता रहे, अणुव्रतों का पालन करती हुई महाव्रतों की भावना भाए, तब तो बहुत बड़ी चीज़ होती। कल के प्रश्न है, महाराज पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली मूर्ति और बिना फण वाली मूर्ति में क्या अंतर है, यही अंतर है कि एक में फण होते हैं एक में फण नहीं होते हैं। और भगवान तो वही है, भगवान है तो कोई अंतर नहीं, जैसा केवल ज्ञान को हुआ वैसे केवल ज्ञान को हुआ। अब भैया आपको अगर सांप देखना हो सांप देख लो, भगवान देखना हो तो वहीं पर भगवान बैठे, अंतर कुछ भी नहीं है। दोनों दोनों मूर्तियाँ वीतराग अवस्था की हैं, दोनों अरंत अवस्था की हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक उपसर्ग अवस्था की है और एक अरंत अवस्था की है, नहीं। उसमें लिखा बृहत फणा मंडल मंडपेन स्फुरत तड़िदपिंग, रुचोप भूल जाते हैं तो भूल जाते फिर रुचोप सर्गम जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संजातम बुदो यथा। ऐसी मूर्ति उनके सामने थी जिसमें वो पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की फणावली से युक्त, और मूर्ति ऐसे मालूम पड़ती है जैसे कि तड़ित अप्रसमा नहीं क्या लिखा अंत में, जैसे कि काले काले बादलों से और पूरा आकाश घिरा हो और उसमें सूरज चमक रहा हो, इस तरह की कल्पना है। तो अपन को जो है इसमें ये देखना चाहिए कि भगवान की वीतरागता महत्वपूर्ण है या कि फणावली महत्वपूर्ण। अब सो तो ऐसा अगर अपन देखें तो चिन्ह बने हैं 24 भगवान के, 13 में विमलनाथ काहे का चिन्ह बोलो, अब वो सूकर का चिन्ह बना नीचे, जब जल धारा करोगे तो सू सही है ना, 13 में विमलना सूकर का चिन्ह। अब सूकर का चिन्ह बना है उसमें तो आपने जब प्रणाम किया था तो भगवान को किया था कि उसको, भगवान को किया था। जल धारा करेंगे तो उसके ऊपर से जाएगी तो क्या सूकर के ऊपर से गई कि भगवान के ऊपर से गई। इसलिए स्थापना निक्षेप में ऐसा मान के चलना चाहिए, उनकी पूजा अभिषेक में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। मेरा मन दोनों स्थितियां हैं, ऊपर से भी करने वाले करते हैं और नहीं। हाँ अच्छा, आप कैसा करते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा, काहे को बेकार परेशान। लेकिन वो जो एक व्यक्ति ऊपर से करता है वो मेरे सामने कहेगा अगर, तो मैं उसको भी यही कहूंगा कि बहुत अच्छा। दोनों स्थितियों में देखो जिसकी जैसी भावना है उसके लिए दोनों चीजें हैं। पूरी प्रतिमा को हम भगवान की मान रहे हैं भैया, वहां हमारी दृष्टि सर्प पर नहीं है, लेकिन जिसकी दृष्टि सर्प पर चली गई है तो आप आराम से भगवान के माथे पर। और है क्या वहां पर पाषाण के अलावा कुछ है क्या? ये तो हमारी श्रद्धा है कि हमने उस पाषाण को भी भगवान मान लिया है और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान मान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं, वरना वहां क्या है। इसलिए इसको दोनों स्थितियों में मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता। कुछ उपाय बताइए, मैं आपसे अलग से मिलूं, मतलब मेरे से आप अलग से बात करें, छोटे से बेटे का होगा मैं पूरी बात समझूं। ऐसा एक बेटा और विदिशा में आया था, उसके पिता ने उसकी शिकायत की थी, कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। तब फिर मैंने उससे अलग से पूछा तो उसने खुद ही कहा कि हाँ मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, किस किस चीज़ में मन लगता है, तो पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है और फिर कैसे उसका मन पढ़ने में लगे, मैं इसको अलग से करूँगा। इसका जनरल आंसर नहीं दिया जा सकता क्योंकि ज्ञानावरण का शवोपशम होते हुए भी अगर हमारा अपना रुझान जिस तरफ है उस तरफ ही हमारा मन लगेगा, ज़रूरी नहीं है कि हमारा पढ़ने में मन लगे ही, और दूसरी चीज़ों में भी लग सकता है जिनसे कि हमें ज्ञान हासिल होता है। कई बच्चे किताब के बिना भी बहुत सारी चीज़ों से ज्ञान हासिल करते हैं, तो देखना ये पड़ेगा कि ज्ञान ही हासिल नहीं हो पा रहा है या कि सिर्फ पढ़ने में चित्त नहीं लग रहा, आपके मन का जॉब है कि नहीं है, ये भी है। ये मैं अलग से, बेटे जिसने लिखा है वो मेरे से दोपहर वाले टाइम में, 3 से 4 वाले टाइम में मैं अलग से बात करूँ। क्या बेटी लोग जो है उनको साड़ी पहन के हार देना ज़रूरी है क्या? अरे वाह, तो क्या आप सूट पहन के देना चाहते हैं? तो आप अगर सूट पहन के देंगे तो पहले ये तय कर लो कि कोई आपका 16 मानेगा कि नहीं मानेगा। कोई भी नहीं मानेगा, देख लेना आप सूट पहन के। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, जब हम स्कूल जाते हैं जिसमें हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें भी हमारा एक यूनिफॉर्म होता है और उसको पहन के हम कितना अच्छा फील करते हैं कि अरे वाह, अब हम स्कूल की ड्रेस पहने हुए हैं और हर्ष मानते हैं उसमें। और इसी तरह अगर हम ये मान लेवें कि हमको आहार देने की और पूजा करने की ये यूनिफॉर्म है, तो उस यूनिफॉर्म को पहनने में अपने को हर्ष ही मानना चाहिए, उसमें दुख नहीं होना चाहिए कि अरे ये बलाएँ कहाँ से आ गई, ऐसा ना सोच करके। और धार्मिक अनुष्ठानों में पहने तो अच्छा ही है भैया। क्यों अपन बचना चाहते हैं? आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे अपन? सब इसी तरह से करने लगेंगे धीरे धीरे करके। शुरू तो हो गया है, पूजा वगैरह में तो शुरू हो गया है, सूट पहन करके भी और ऐसे कपड़े पहन करके, भाई लोग भी ऐसे ही पैंट शर्ट पहन करके और सब करने लगे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज मिलेगा? कल के दिन कोई पंचा पहनने वाला और धोती पहनने वाला और दुपट्टा ओढ़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। हमने बड़ी मुश्किल में तो ये परंपरा बना पाई थी और भली थी, कोई ऐसा नहीं कि बुरी हो तो अपन खत्म कर दें। अच्छी परंपरा बनाई थी, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति का सूचक है वो। हम गर्म देश में रहते हैं भैया, इसलिए हमने अपना यूनिफॉर्म भी गर्म देश के हिसाब से चुना। ना हमने टाई चुनी, ना सूट चुना, ना बूट चुना, ना हैट चुना, ताकि टकार है ही नहीं कहीं भी। हाँ, हमने अपनी संस्कृति के हिसाब से ठंडे प्रदेश में तो बांधना पड़ेगा, गले में भी बांधना पड़ेगा, बिल्कुल बंद कर करके रहना पड़ेगा, शॉक शूज भी पहनना पड़ेंगे, सब कुछ हैट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन गर्म प्रदेश में तो एक ठो दुपट्टा डाल लिया, थोड़ी सी धोती लपेट ली और बस हो गया अपना काम। इसलिए हमने वैसी यूनिफॉर्म चुनी है, उसी का उपयोग करना चाहिए भैया। थोड़ी तकलीफ तो होगी आपको, साड़ी बांधने में तकलीफ तो होती है, लेकिन साड़ी जब पहनते हैं तब कैसे चलते हैं? बहुत शालीनता के साथ, दौड़ धूप नहीं कर सकते, गड़बड़ सड़बड़ नहीं कर सकते हैं उसमें, बड़े आराम से चलेंगे, बिल्कुल शुद्धिपूर्वक क्रियापद, जैसे जैसे महाराज जी चलते हैं चार हाथ आगे देख करके, ऐसे बढ़िया से अच्छा लगता है उसमें। किसी को जब कष्ट पहुँचता है तब, अरे वाह, किसी को जब कोई तकलीफ या दुख होता है तो अपनी माँ की याद क्यों आती है, पिता की क्यों नहीं आती? सही है, हैं? सही है, क्योंकि उसने, माँ ने सबसे ज़्यादा कष्ट हमारे लिए सहा है, और जो हमारे लिए कष्ट सहता है, जब हम कष्ट में होते हैं तो उसे ही याद करते हैं, क्योंकि उसी से सहायता मिलने की आशा। इसीलिए हमने शुद्ध देवता ना कह करके जिनवाणी माँ कहा, मातेव बालस्य हितानुशास्ता। भगवान को कह रहे हैं कि आप माँ के समान हैं, हे भगवान, जैसे माँ अपने बच्चे का हमेशा हित ही चाहती है, कभी अहित नहीं चाहती है, कितना ही खराब से खराब, कुरूप से कुरूप बेटा भी क्यों ना हो, कितना ही बिगड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन जब चाहेगी तब हित ही चाहेगी, और जो हित चाहने वाला है, हमारे दुख को समझने वाला है, उसी के सामने तो अपना दुख कहा जाता है, उन क्षणों में उसी को तो याद किया जाएगा। एक जगह लिखा है कि आंसू उस जगह आए जहां आंसू की कीमत समझी जाए, दुख वहां कहां जाए जहां कि कोई दूसरे के दुख में स्वयं दुखी हो सके। तब जाकर के व्यक्ति वहां अपने दुख को कह पाता है। और जहां किसी के दुख का मजाक उड़ाया जाए, जहां किसी के आंसुओं को कमजोरी माना जाए, वहां किसके आंसू आएंगे और कौन अपना दुख प्रकट करेगा? कोई नहीं करेगा। भावनाओं का एक्सप्रेशन भी वही होता है जहां की सामने उस चीज की समझ होती है। इसलिए शायद यही लिखा है, कभी भी किसी को दुख होता है तो माँ की याद आती है। आचार्य महाराज ने आपको जब से धर्म प्रभावना के लिए भेजा, तब से आपने क्या क्या अनुभव किया? और कब से भेजा? तो 1986 में, 80 से लेकर के 85 तक के चतुर्मास तो आचार्य महाराज के सानिध्य में किए। फिर उसके बाद 86 से अभी तक आचार्य महाराज जहां आज्ञा देते हैं वहां पर और करता रहता हूं। मेरा अनुभव क्या है? मेरा अनुभव ये है कि मैं जहां भी जाता हूं और आचार्य महाराज के नाम से और मेरा काम चलता रहता है। आचार्य महाराज का ऊपर बोर्ड लगा देते हैं, अपन नीचे बैठ जाते हैं। ब्रह्मचारी कह के आए थे कि आचार्य श्री का नाम ऊपर और नीचे अपन बैठे हैं, सारा काम आसानी से चलता रहता है। हाँ, अपनी योग्यता और क्षमता नहीं होने के बाद भी काम आसानी से चलता रहता है, ये हमने जीवन में अनुभव किया। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जगहों पर मुश्किलों के बावजूद भी सारी चीज़ें आसान हो जाती। मुझे हमेशा याद रहता है एक बात, ग्वालियर में मेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी, जिसमें कि कुछ भी नहीं किए जाने पर भी अगर दोषारोपण हो और वो भी एक साधु के द्वारा दूसरे साधु पर हो, कैसा लगता है? और पत्रकारों के द्वारा जोड़ करके और पेपर में निकालना शुरू हो जाए, 3 दिन तक वह प्रक्रिया चलती रही। मैं दम साधे चुपचाप रहा कि ठीक है, सब चीज़ें, इसलिए तो मेरे मुंह से उस दिन निकल गया था कि मैंने सम्मान भी देखा है, अपमान भी सहा है, सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, कोई बात पड़ी। लेकिन दोनों में समता रखना बहुत कठिन, दोनों स्थितियों में। आप कभी कभी हम लोगों के तीर्थ यात्रा के शिखर जी से आगे जाने के संस्मरण सुनेंगे, कलकत्ता जाने के, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, कैसे जो है लोग रोक लेते थे। ग्वालियर की घटना के साथ साथ दूसरी घटना भी याद आ गई, वो भी सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन क्षणों में कौन सहायी होता है? सिर्फ एक ही, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, वही सहायी होता। 3 दिन तक मुश्किल के बावजूद सुबह सुबह 4th दिन और आचार्य महाराज स्वप्न में दिखाई पड़े और आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या क्या कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई मैसेज भेजा हो उनको, कोई मैसेज नहीं भेजा था, लेकिन कह रहे हैं धैर्य रखो, संयम से काम लो, बस इतना ही। और आप आश्चर्य करेंगे कि 12:15 बजे और मैं सामायिक में जाने वाला हूँ, उतने में एक व्यक्ति आते हैं, नमोस्तु महाराज। हाँ भैया, अब समय हो गया सामायिक का। नहीं नहीं, आपसे मिलना ज़रूरी है। क्यों? हम आचार्य श्री के पास से आए हैं, अमरकंटक से, 800 किलोमीटर दूर से। हाँ, अब भी आए हम वहीं से। तो हमने कहा, हमारे लिए कुछ कहा आचार्य श्री ने? बोले, पता नहीं, वो तो सबके लिए आशीर्वाद तो देते ही हैं, लेकिन उन्होंने तो मुँह से बोल के कहा कि कहना उसको आशीर्वाद और संयम से काम ले, बिना उसके, बिना मैसेज के। आप बताइएगा। मैंने कहा, ये तो मुझे सवेरे मिल गया स्वप्न में ही कि आशीर्वाद और संयम से काम, वही बात हमने कही। हम जो है अपने भावों से अगर अपने गुरुओं से जुड़े रहें तो बाधाएं भी आसानी से दूर हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति बन सकती है, बहुत बहुत जगह ऐसी स्थिति बन जाती। दूसरा वाला क्या कह रहा था, मैं एक और उदाहरण था, वो गायब हो गया, भूल ही गया। अब वो एकदम थोड़ी याद आ
रही,
ठीक है। तो एक उदाहरण तो हमने, ये हमारे जीवन का अनुभव है कि बहुत बहुत मुश्किलें भी आई, पर फिर भी आचार्य महाराज को याद करता हूँ। कई बार मेरे से कई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तब सिर्फ याद करता हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, मुझे खुद आश्चर्य होता है कि पूरे 1.5 महीने के प्रवास में महावीर जी में कुल 7-8 दिन ऐसे होंगे जिसमें कि आचार्य श्री स्वप्न में ना दिखे। प्रतिदिन मेरा 1.5 महीने स्वर्णिम गुजरा है महावीर जी, स्वर्णिम जिसको कहते हैं, कोई विकल्प नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है मन के अंदर कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई प्रवचन की चिंता नहीं। जाकर के बैठ गए आहार के बाद और शाम को बैठ गए, बस उतने में ही लोग, नए नए लोग हैं, रोज आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, कोई बिल्कुल शांति से जो है किसी चीज का विकल्प नहीं, कहीं जाने तक का विकल्प नहीं है। कोई कहता था मेरे से, एक बार निवाई के लोग आए थे कि आप निवाई चलो, तो उनको मैं झुंझला पड़ा था कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ महावीर जी, मैं बहुत मुश्किल से तो चल चल के पांव पैदल आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। और रोज आजय श्री दिखाई पड़ते थे सपने में, दो चार दिन मिस हुआ होगा बाकी। तो अनुभव यही है कि अगर अपन अपनी श्रद्धा रखें तो बहुत आसानी होती जीवन में, समता बनी रहती। हर चीज़ में मुझे डर क्यों लगता है? अरे वाह, ये भी छोटे से बच्चे का है ना। अब देखो इसके लिए हम आपको छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझाएं, हम अलग से छोटे बच्चों से बात कर लेंगे हम, तो उनको समझा देंगे। ये भी छोटे बच्चों की राइटिंग है। इस धरती पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? शुरू से है भैया, सब लोग शुरू से हैं। वह क्या होता है अपने यहाँ पर कि जब प्रलय होती है ना, तब 32 जोड़े और स्केटर्ड अलग अलग बिना पेयर के बहुत सारे मनुष्यों को देवलोक गुफाओं में बजा लेते हैं, और फिर बाद में जब प्रलय का काल खत्म हो जाता है तब फिर वो सब बाहर निकलते हैं और अपना जीवन फिर शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे करके और बढ़ना शुरू हो जाता, फिर से डिक्रीज हो जाता, फिर इंक्रीज होने लगता, ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन कभी भी कोई हमेशा समाप्त नहीं होता, जीव हमेशा से है और हमेशा बना है। स्वर्ग नरक क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि इस धरती पर ही स्वर्ग नरक है। क्या ये बात सही है? है तो सही, इस धरती पर ही है। इस चित्रा पृथ्वी के नीचे चले जाएंगे तो इसी से लगे हुए हैं नरक, और इस चित्रा पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सुमेरु पर्वत के ऊपर और 40 योजन और एक बाल बराबर वहां से जो है शुरू हो जाते हैं स्वर्ग। और अगर अपन देखें तो अपने जीवन में भी स्वर्ग नरक है। क्या हुआ था एक बार, एक साधु के पास में एक सेनापति गया और उसने कहा कि क्या बाबा जी, तुम लोगों को स्वर्ग नरक का भय दिखा करके और रोजी रोटी कमाते हो अपनी, ये तो अच्छा नहीं लगता, आपको स्वर्ग नरक का भय दिखाते हो। तो साधु जी कुछ नहीं बोले। साधु जी ने ये कहा कि मैंने पहचाना नहीं आप कौन हैं। तो सेनापति ने कहा, आप पहचान लो, मैं सेनापति हूँ। सेनापति से तो नहीं लगते तुम, ना उतने ताकतवर मालूम पड़ते, आपको मेरी ताकत देखनी है क्या? तुम क्या बताओगे अपनी ताकत, तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं। हे बाबा ठीक से बोल, मेरे पास तलवार भी है। तलवार होगी तो होगी, वो तो बच्चों के पास भी रहती है, वो तो लकड़ी की होती। अरे नहीं, मेरे पास लकड़ी की नहीं, सच्ची सच्ची की है। होगी तुम्हारे पास सच्ची की, उसमें धार है ही नहीं। तो तुम क्या धार देखना चाहते हो? दिखाऊं क्या धार? और तलवार निकाल ली और बाबा की गर्दन पर रख दी। जैसे ही गर्दन पर रखी तो बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा कि सेनापति सावधान, इस समय तुम नरक से गुजर रहे हो। हाँ, अब ऐसा सुनते ही सा सेनापति सब पका गया कि बात तो सही है, और सेनापति बहुत दुखी हुआ, तलवार ज्यों की त्यों रख करके चरणों में गिर पड़ा। तो साधु ने फिर उठा के कहा, सेनापति अब तुम स्वर्ग से गुजर रहे, स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं। हमारे अपने परिणाम, खोटे परिणाम हमारा नरक है और अच्छे परिणाम हमारा स्वर्ग है। जिसको करने से मन हल्का हो जाता है वही तो धर्म है, और जिसके मन करने पर छाती पर जैसे पत्थर रख दिया हो वही तो पाप है, वो भारी है, वही नरक ले जाने वाला है। भारी होंगे तो नीचे जाएंगे, हल्के होंगे तो। नीचे हैं, यही तो अपन ने भौगोलिक रूप से भी उनकी स्थिति बताई है, मानसिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से, दोनों स्थितियों में भैया स्वर्ग और नरक हैं। और टाइम तो जो है पूरा हो गया, कल के प्रश्न ज्यों के त्यों रखे रह गए। जिनके प्रश्न हैं वे आज ले लेवें और कल अपने आप रख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो रखे ही रह जाएंगे। ऐसा मैत्री भाव करते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से